بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام تاریخ اسلام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور سحر عالمی نیٹورک کی ٹیم یہ پروگرام براہ راست آپ کے لیے نشر کر رہی ہے. امید ہے کہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اور چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ہماری گفتگو پچھلے پروگرام میں جنگ تبوک پہ رہی، اور اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے. اور آج بھی جنگ تبوک کے سلسلے میں جو اہم مطالب رہ گئے ہیں ان پہ گفتگو کریں گے جناب مولانا باقر رضا صاحب قبلہ. اور انشاءاللہ جیسا کہ اشارہ کیا گیا پچھلی جنگ میں کہ پچھلے پروگرام میں کہ اس جنگ کے اہم اسباب کیا تھے، کس بنا پہ یہ جنگ اگرچہ نہیں ہو پائی لیکن لشکر اسلام اور سپاہ اسلام کا جمع ہونا، اور کچھ افراد جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کی بلکہ مخالفت کی کسی حد تک، اور اس جنگ میں جانے سے انکار کیا اور کسی صورت میں اعتراض بھی کیا، اور اس سے مربوط بہت سارے مطالب ہیں کہ پھر جو لوگ انکار کرتے تھے، جو مدینہ میں کچھ اپنی طرف سے سوچنا چاہتے تھے، اپنی کچھ پالیسی اور منصوبہ جات انہوں نے بنائے تھے، اس حوالے سے بھی گفتگو رہے گی. اور خاص کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم شخصیت جو مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانشین کے طور پہ منصوب ہوئی تھی، اس شخصیت کے بارے میں اور ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں قرآن کریم نے کیا بیان فرمایا ہے، اور نبی اکرم کے کیا بیانات رہے ہیں، اس پہ بھی گفتگو ہوگی آج کے پروگرام میں. لیکن حسب معمول ہم پروگرام کے ابتدا میں ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، غزوہ تبوک یا جنگ تبوک جسے کہا جاتا ہے، اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور آج بھی مولانا باقر رضا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس چینل کے لیے وقف کیا، اور آپ کے واقعاً مشکور ہیں. شکریہ.
خدا آپ کی زحمت کو انشاءاللہ قبول فرمائے.
قبلہ، جیسے کہ عرض کیا اور آپ بھی واقف ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کے پچھلے پروگرام میں جو آپ نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا اس جنگ کے بارے میں، ہم چاہتے ہیں کہ وہیں سے اس سلسلے کو شروع کیا جائے، اور ایک خلاصہ کے طور پہ اگر کچھ کہنا چاہیں گے پچھلے پروگرام کے بارے میں، پھر اس کے بعد جو سوالات رہیں گے.
جی ہاں، آج کے پروگرام کو گزشتہ پروگرام سے اگر ریلیٹ کیا جائے اور یعنی مربوط کیا جائے،
تاکہ ہمارے ناظرین بھی ہمارا
ظاہر سے بات ہاں ناظرین ہو سکتا ہے کچھ نئے ہوں اور کچھ پرانے بھی ہوں، کچھ بھول گئے ہوں، تو یہ غزوہ تبوک جو ہے یہ، اور بلکہ پورا سال عام الوفود ایک پروگرام ہو چکا ہے، یعنی لوگ آ رہے تھے ملنے کے لیے. یہ اس طرح سے آپ سمجھیے کہ ایک طرح کا اسلامی تاریخ کا چوراہا ٹائپ ہے، یعنی جہاں سے ایک خاص موڑ ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے اس کو، یعنی جس طرح سے ہجرت ایک خاص موڑ ہے، فتح مکہ ایک خاص موڑ ہے، اسی طرح سے یہ سال بھی ایک خاص موڑ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے اسلام کی طاقت باقاعدہ شروع ہو رہی ہے.
بالکل.
فتح مکہ میں ہو چکی ہے، لیکن یہاں باقاعدہ شروع ہو رہی ہے، اور ایک ایسی جنگ کو شروع کرنے جا رہے ہیں رسول اللہ، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جہاں منافقین الگ اور جو سچے مومنین ہیں وہ الگ ہو جائیں گے. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں، اب تک جو رسول اللہ کے پاس آ رہے تھے وہ مسلمان ہو رہے تھے، وہ ظاہری بات ہے اس میں بھی منافقین تھے لیکن ان کی بہت کم تعداد تھی، لیکن اب جو آ رہے ہیں وہ طرح طرح کی نیتوں کے ساتھ آ رہے ہیں.
بالکل.
طرح طرح کے ان کے ذہن میں مقاصد ہیں. ایک تو کچھ لوگ مجبوراً آ رہے ہیں، کچھ لوگ اسی طرح سے، مثلاً یہ کہ اب ظاہر سی بات رسول اللہ قدرت پا گئے، اقتدار میں آ گئے ہیں، اب کوئی چارہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کے واقعی یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ جب اقتدار پا گئے ہیں، اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اس کا مطلب رسول اللہ کے علاوہ کوئی معنوی طاقت ہے ان کے اندر، یہ سوچ کے آ رہے ہیں. مختلف طرح سے لوگ مختلف ہدف کے ساتھ، مختلف مقصد کے ساتھ، اور مختلف طریقے سے لوگ آ رہے ہیں. تو اب ان میں واقعی ان کو چھانٹنا اور ان کو منتخب کرنا اور ان کو الگ الگ کرنا بڑا سخت ہے. اور یہ جنگ تبوک یہ ایک ایسی جنگ ہو گئی ہے، اگر البتہ جنگ ہوئی نہیں، لیکن یہ واقعہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ اس میں واقعہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا.
بالکل.
یعنی اس طرح کے واقعات آئے. سب سے پہلی بات، ہم نے اس کے تین چار اس کے خصوصیات بیان کیے تھے. نمبر ایک، اس میں بہت پریشانی تھی. ایک تو ایسی فصل کٹنے کا وقت آ رہا تھا، لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے مثال دی تھی کہ جیسے آدمی کو تنخواہ ملتی ہے مہینے کے آخر میں، دو چار دن پہلے کوئی کہے کوئی بہت بڑا کام کرنے کے لیے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ ختم ہو گیا، ملنے والا ہے، اور ملنے سے پہلے ہم کو کہیں جانا ہے، तो फसल कटने वाली थी, गर्मियों के दिन थे और फसल अभी कटी नहीं थी, लोगों के पास चीज़ें नहीं थी इस तरह के, साजो सामान, पैसा और ये सब चीज़ें नहीं थी और उनको जाना था कहीं, तो ये यानी बहुत परेशानी थी। दूसरी बात यह है कि अगर उनके पास सब कुछ था भी, अगर होता भी, तो इतने दूर का सफ़र था कि अभी तक कोई जंग इतने दूर जाकर नहीं हुई थी।
और
तो
ताकत जो थी सामने, जो लश्कर था वो बैरूनी ताकत,
वो भी बैरूनी ताकत थी, यानी कि रोम एक, जाहिर सी बात है, एक फ़ारस की ताकत थी दुनिया में उस वक्त और एक रोम की ताकत थी, यानी गोया ये दुनिया की दो बड़ी ताकतें थी जिसमें से एक ताकत से अब मुकाबला किया जा रहा, यानी करने जा रहे थे। तो ये इस एतबार से एक तो मुसलमानों को ख़ुद अपने आप को गोया देखना था हम कितने ज़ाहरी एतबार से, फ़ौजी एतबार से और हम साजो सामान के एतबार से कितने पानी में हैं, हम कितने मज़बूत हैं, क्या हम वाकई मुकाबला कर सकते हैं इनका, वाकई रूम वालों को या मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इस एतबार से परेशानी के एतबार से, दूर का सफ़र, गर्मी का सफ़र, यहाँ तक कि मैंने बयान किया कि बाद जगह ऐसा ऐसा वक्त पड़ा है रास्ते में कि एक खजूर, खजूर कितना सा होता है, कोई जाहिर सी बात है कि कोई आम नहीं है, कोई सेब नहीं है, तरबूज नहीं है, मतलब बड़े फल में नहीं है, छोटे फलों में शुमार होता है, बहुत छोटा, पर एक खजूर वो दो आदमियों के पास पड़ा, यानी एक एक वक्त का खाना यही है कि आधा आधा खजूर खा लीजिए,
आधा आधा खजूर खाए दो आदमी।
जी, ये खाने के एतबार से भी, पानी के एतबार से भी परेशानी आ रही थी। तो ये ऐसे मौके का वाकया है और इस तरह से कि रसूल के पास ताकत आना शुरू हुई थी ज़ाहरी एतबार से, दुनियावी एतबार से, वो इलाही जो ताकत थी और मानवी वो तो थी अपनी जगह, लेकिन ये शुरू हुई, लेकिन अभी आई नहीं थी इस तरह से बाकायदा, एक वाकया हो गया था फतेह मक्का वाला और अच्छी खासी ताकत उसके एतबार से आना शुरू हुई थी, लेकिन बाकायदा नहीं आई थी। और ये थोड़ा सा इसको आजमाना भी था कि ये ताकत जो आ रही है, ये जो लोग आ रहे हैं, ये कितने पानी में हैं, ये क्या क्या यानी अपने जहन में, अपने दिल में नियत लेके आ रहे हैं, किस गरज से आ रहे हैं, किस मकसद से आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छा हो गया कि शुरू ही में लोगों को आजमा लिया गया,
आजमा लिया गया।
और एक ख़ास अहम जो ये यानी कि खासियत है इस वाक़े की, भाई ये बयान किया है कि मुनाफिकीन का चेहरा बेनकाब होना, यानी कई रुख से हुआ, ये मतलब नहीं है कि एक कोई ख़ास वाक़या हो गया, खुद यही कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं जंग पर, इसके एतबार से, इसी एतबार से कि यानी रसूल अल्लाह के ख़िलाफ़ और मौला अली के ख़िलाफ़ उन्होंने साजिशें की और इस तरह से कहा कि मौला अली को चूँकि रसूल अल्लाह नहीं ले गए, मदीने में छोड़ गए, इसका मतलब इन दोनों में कुछ जो है अनबन हो गई है, कुछ इन लोगों में इख्तलाफ हो गया है, इसका मतलब रसूल अल्लाह चाह रहे थे कि रसूल इनको मौला अली की गोया गोशमाली करें, उनको एक तंबीह करें, माज़ल्ला इस तरह से, ये है। यहाँ तक कि वहाँ से वापसी में जब गज़वे तबूक से वापस आए हैं तो रसूल अल्लाह के कत्ल की साजिश की गई बाकायदा, वो हम बयान करेंगे,
रास्ते में
जब वापस आ रहे हैं तो वहाँ कत्ल की साजिश की गई कि रसूल अल्लाह के ऊँट को इस तरह से मसलन धक्का दे दिया जाए या कैसे कर दिया जाए कि ऊँट गिर जाए मसलन और रसूल अल्लाह वहीं ख़त्म हो जाए। ये किस वजह से था, देखिए इसमें बहुत से पॉइंट हैं। एक वजह यह थी कि मौला अली साथ नहीं थे रसूल अल्लाह के, रसूल अल्लाह के साथ मौला अली नहीं है जब, मौला अली मदीने में
है।
तो फिर मस्जिद ज़िरार का पूरा एक किस्सा है। तो ये सब बड़े पॉइंट हैं गज़वे तबूक के ये पूरे साल में और ये इसके वाकये में अच्छे खासे यानी वो आ जाती है। ये ख़ास तौर से बात आती है कि मौला अली को क्यों छोड़ के गए रसूल अल्लाह और क्यों साथ नहीं ले गए।
बिल्कुल इसी मोड़ पे आते हैं हम, चूँकि फिर मस्जिद ज़रारा का वाकया भी है, इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो आज ही, अगर ना किसी अगले प्रोग्राम में आपसे हम सुनेंगे इस पूरी दास्तान को। लेकिन मौला अली के बारे में चूँकि अहम नुक्ता है कि किसी भी जंग में आप जो है पीछे नहीं रहते थे,
यानी 27 जंगें ऐसी हैं कि जहाँ रसूलल्लाह रहे हैं जंग में उसको गजवा कहते हैं, जहाँ रसूलल्लाह खुद जंग में हाजिर हो उसको गजवा कहते हैं, जहाँ नहीं हाजिर हो उसको सरिया कहते हैं। तो इस एतबार से 27 ऐसी जंग है रसूलल्लाह बेनफ्स नफीस खुद उस जंग में मौजूद रहे हैं, लेकिन एक जंग सिर्फ ऐसी है कि जिसमें मौला अली नहीं है, 26 में मौला अली साथ साथ हैं रसूलल्लाह के, एक गज़वे तबूक ऐसा है कि जहाँ मौला अली नहीं है, सिर्फ रसूलल्लाह है।
बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे क्या वजह है इसकी।
ये जाहिर सी बात है वजह खुद ब खुद अभी वाकये में आ जाएगी कि मौला अली को रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम यहाँ रहो मदीने में और हमारे ख़ानदान वगैरह को देखो वालो। रसूल मौला अली ने जाहिर सी बात जब शब हिजरत में मान लिया तो यहाँ क्यों नहीं मानेंगे, मौला अली की जाहिर सी बात रसूल अल्लाह ने कहा और आपने मान लिया, हमने कहा कि ठीक है हम यहीं रह जाएंगे। रसूल अल्लाह बाहर निकले ही थे कि मुनाफिकीन ने ये उड़ाना शुरू कर दिया कि ये जो छोड़ के गए हैं रसूल अल्लाह मौला अली को, ये किसी ख़ास वजह से छोड़ के गए, इनको कुछ ज़रा सा तंबीह करना चाह रहे थे, कुछ गड़बड़ी इन लोगों के दरमियान है, इनके ताल्लुकात अच्छे ख़राब हो गए दोनों के, मौला अली को थोड़ा सा नीचा दिखाना चाह रहे थे माज़ल्लाह।
बाज़ किताबों में जो थोड़ा बहुत मुताला हम भी करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि ताने दिए मुनाफिकीन ने,
जी बाकी
बच्चों और औरतों की चौकीदारी के लिए नाउज़ुबिल्लाह। आपका
ज़ाहिर बात उसमें तो अरब में तो तरह तरह के तरीके थे उभारने के लिए भी, यानी जंग में जैसे इस तरह के तरीके थे कि कोई अगर वापस ना आए जंग से तो औरतें आती थी उसको जोश दिलाती थी जंग लड़ने के लिए। इसी तरह से ये भी थे, यानी बाकायदा औरतों के बारे में तो एक ताना वहाँ का मशहूर है यानी अरब के, तो तरह तरह के बहरहाल उन्होंने अपने जो हरबे थे वो इस्तेमाल किए। आखिर मौला अली ने जब ये देखा तो रसूलुल्लाह अभी मदीने से निकले ही थे, थोड़ा कुछ दूर पर पहुँचे थे, और उस जगह का नाम ज़ाहरन जरफ है कि जहाँ मौला अली पहुँचे, जरफ नाम एक जगह पर।
एक एक सवाल है यहाँ पे, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इनके मुकाबले में यानी जो मुनाफिकीन ताना देते थे या जो बातें करते थे आपस में बनाते थे, इन कोई रद्द अमल नहीं था इनके मुकाबले में, कुछ नहीं कहा इनसे?
ये आप ये देखिए कि मौला अली रहते बात इंतज़ार करते थे, रसूलुल्लाह खुद भी हल्का फुल्का कुछ कहा लेकिन ये कि इतने तफसील के साथ नहीं, लेकिन ये कि पहले रसूलुल्लाह के पास गए, रसूलुल्लाह के पास गए और रसूलुल्लाह से कहा कि ऐसे ऐसे ये उड़ा रहे हैं और इस तरह की अफवाह वहाँ फैल रही है, आपका क्या ख्याल है? तो रसूलुल्लाह ने जो यानी जो एक जुमला तो मशहूर है वो हदीस मंजिलत है, उससे पहले का भी जुमला है वो भी अजीब है। देखिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि इरजा याखी इला मकानिक, ए भाई अपनी वहीं मदीने में वापस जाइए, फ़इन्नल मदीना तला तसलहु इल्ला बी औ बिका, मदीने को या मैं चला सकता हूँ या तुम चला सकते हो, कोई और नहीं चला सकता। मदीने को जो साले यानी कि उसकी मसलहत को सोच सकता है, उसकी मसलहत के अतबार से आगे बढ़ सकता है, या मैं कर सकता हूँ या तुम कर सकते हो। और ये मशहूर फ़अंता खलीफ़ती फ़ी अहली वदार हिजरती व कौमी, ये पूरा यानी यह है कि तुम मेरा खलीफा हो, मेरे घर वालों में है, मेरे वहाँ का उस जगह पर जहाँ मैंने हिजरत की है, और मेरी कौम में तुम मेरे खलीफा हो। अमा तरदान तकूना मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि जो नस्बत हारून को थी मूसा से, जनाब मूसा से, दोनों यानी कि वो वसी थे जनाब हारून और जनाब मूसा पैगंबर थे, जो उन दोनों की नस्बत थी वो हमारे दरमियान ये कायम रहे, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो? मौला अली ने ये सुना, वो फिर वापस आए। अब जाहिर सी बात है कि कहने को तो मैंने थोड़े दो चंद लम्हों में इस हदीस को सुना दिया और नाजरीन ने सुन लिया, आपने भी सुन लिया, लेकिन इस हदीस में बड़ी यानी कि चीज़ें हैं। और ये हदीस मतलब जो जिक्र की है बुखारी में, ये हदीस मौजूद है, अबू नईन इस्फहानी ने जिक्र किया है, बेहकी ने जिक्र किया है, ख़तीब बगदादी ने जिक्र किया है, हैज़मी ने, मुत्तकी हिंदी ने, हाकिम निशापुरी ने कहा है कि सहीहुल असनाद है। देखिए बहुत सी रिवायतें हदीसें होती हैं कि नकल तो हुई है, आई है किताब, लेकिन सनद के अतबार से सही नहीं। सनद का मतलब यह है कि जिसने नकल किया है या जिस नकल करने वाले ने जिससे नकल किया है, चूंकि हम तो 1435-36 में चल रहे हैं इस वक्त, तो उस एतबार से 1400 साल हो गए, तो दरमियान में किस किस ने हम तक कैसे पहुँची, तो इस दरमियान में अगर कोई ऐसा आदमी है जो गलत है, जो झूठ बोलता है, जो उसको कहते हैं कि ये सनद के अतबार से सही नहीं है, हदीस नहीं है। लेकिन हाकिम निशापुरी कहते हैं कि ये सहीहुल असनाद हदीस है। तो इतनी हदीस, ऐसी हदीस के जो सहीहुल असनाद है उसमें मौलाए कायनात के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि क्या तुम राज़ी नहीं हो, यानी मौला अली को भी गोया एक तरह से राज़ी करना चाह रहे हैं, यानी ये भी एक जिसको कहते हैं कि अपनाइयत है इतनी आपस में,
अपनापन इतना पाया जाता है आपस में,
कि क्या तुम राज़ी नहीं हो कि तुम्हारी वही मंजिलत रहे जो हारून की थी मूसा से। अच्छा क्या मंजिलत थी
इस मंजिलत के बारे में हम आपसे पूछेंगे और सुनेंगे भी इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू पसंद आ रही होगी, एक वक्फे के बाद हाजिर कर। जंग तबूक के अहम वाक़यात, एक मुनाफिकीन का बेनकाब होना, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मंजिलत और अज़मत, और तीसरा अहम जो अभी आपने इस आयत करीमा में भी देखा, मस्जिद ज़रारा। ये कुछ ऐसे वाक़यात हैं जनाब मौलाना बाकर रज़ा साहब इन अहम वाक़ात पे रोशनी डाल रहे हैं यहाँ पे, आइए हमारा और साथ दीजिए। जी क़िबला, आप इस मंजिलत को बयान फरमाना चाहते हैं?
जी, ये हदीस मंजिलत, ये हदीस इस नाम ही से मशहूर है, यानी तारीख़ में और किताब हदीस में ये कहा जाता है कि हदीस मंजिलत, यानी यही अमा तरदान तकुना मिन्नी बे मंजिलत हारून मिन मूसा, ये मंजिलत।
अगर हम आज भी नेट पे हदीस मंजिलत लिखें तो ये हदीस,
जी ये हदीस आ सकती है, अगर हदीस मंजिलत लिख के तलाश करें तो ये हदीस आ सकती है आराम से। तो इस एतबार से हम देखें कि मंजिलत का मतलब क्या है। मंजिलत का से मुराद ये है कि हम तशबीह दे रहे हैं, हम किसी चीज़ को किसी चीज़ की जगह पर ला रहे हैं, किसी चीज़ को किसी चीज़ का यानी जानशीन बना रहे हैं। यानी एक तो ये है कि जनाब मूसा ने जनाब हारून को अपना जानशीन बनाया, रसूलल्लाह ने मौलाए कायनात को अपना जानशीन बनाया, ये तो जानशीनियत भी अपनी जगह है, लेकिन ये कि जिस तरह से जनाब मूसा की जानशीनी थी हारून के लिए, इसी तरह से जनाब रसूलल्लाह की जानशीनी है मौलाए कायनात के लिए, किस तरह से है, यानी ये तशाबो किस तरह से है। रसूलल्लाह ने इतनी अहम जगह पर, इतने अहम मोड़ पर कि जब मुनाफिकीन इतना बड़ा यानी कि फसाद कर रहे थे और अफवाह फैला रहे थे और साजिशें रच रहे थे, उस अहम मौके पर जो हदीस इरशाद फरमाई है। अब जाहिर सी बात है, मैं आप बताता चलूँ नाज़रीन को कि ये हदीस रसूलुल्लाह ने एक जगह इरशाद नहीं फरमाई है, ये एक जगह है कि जहाँ इरशाद फरमाई है, इसके अलावा जगह जगह पर इरशाद फरमाई है। इसी वजह से आप मुख्तलिफ कुतुब में देखेंगे तो हो सकता है बाद कुतुब में दूसरी ताबीर हो, यानी कभी कभी लफ्ज़ बदला हुआ हो। मसलन मंजरत तो मंजरत अपनी जगह पर है, लेकिन हो सकता है यानी जैसे कि हम उर्दू में और दूसरी ज़बान में बोलते हैं, हर ज़बान में यह है कि एक चीज़ को बयान करने के लिए मुख्तलिफ ताबीरें होती हैं, मुख्तलिफ किनाए और इस्तारे होते हैं। तो मौलाए कायनात के बारे में रसूल अल्लाह ने चूँकि जगह जगह पर यह हदीस बयान की, इसलिए रसूल अल्लाह की जो ताबीरें हैं वो मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ ताबीरों से मुख्तलिफ बातें फिर सामने आती हैं। ये जाहिर सी बात है, ये नाज़रीन ये ना सोचें कि सिर्फ जंग तबूक के मौके पर किया है,
इससे पहले भी बयान
और बाद में भी बयान किए मुख्तलिफ ताबीरों में। खैर, ये इस मौके पर जो रसूलुल्लाह ने बयान की, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जनाब मूसा और जनाब हारून ये बीच में यानी कि आगे गया हमारी गुफ्तगू में, ये असल इन दोनों का रबता कैसा था। अब देखिए सूरह ताहा है 29वीं और 30वीं आयत, अलबत्त इससे पहले की आयत मैं दो चार पढ़ूँ कि दुआ कर रहे हैं जनाब मूसा, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। उसके बाद है वजअल्ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी, अल्लाह से दुआ की कि मेरे ख़ानदान में से एक वज़ीर मेरे लिए मुंतखब कर दे, मुय्यन कर दे, करार दे दे, और वह हारून है जो कि मेरे भाई हैं। ये सूरह ताहा की 29वीं और 30वीं आयत है। उसके बाद ये है जनाब मूसा ने, अब सूरह आराफ़ की 142 नंबर की आयत है, काला मूसा लियाखी हारून उखलुफनी फ़ी कौमी, कि तुम मेरे कौम में मेरे जानशीन, कि उखलुफनी ये बाकायदा खलीफा का लफ्ज़ है, ये खलीफा का लफ्ज़ है बाकायदा, मेरी कौम में मेरे जानशीन दो, मेरे खलीफा रहो। अच्छा, नबी के बारे में ज़ाहिर बात यह है कि नबी कोई दुआ करे और कबूल ना हो, ये हम सोच नहीं सकते, लेकिन जाहिर सी बात है अब कुरान से ये भी हम दलील लेके आए हैं कि नहीं, अल्लाह ने कबूल भी किया है। देखिए सूरह ताहा की 38वीं आयत देखिए, यानी खुदा वंदे आलम इरशाद फरमाता है, कद ऊती का ऊती का या मूसा, ए मूसा मूसा तुम्हारा सवाल, तुम्हारी दुआ पूरी कर ली गई, तुम्हारा वो अता कर दिया जो तुमने मांगा था, यानी जनाब हारून को हमने तुम्हारा खलीफा बना दिया, तुम्हारा जानशीन बना दिया। अब देखिए जनाब हारून वज़ीर थे और जनाब मूसा के शरीक थे, तो इसका मतलब मौला अली रसूलल्लाह के ज़ाहिर सी बात शरीक भी हैं और वज़ीर भी हैं। अलबत्त कुरान में जो लफ्ज़ आया है मौला अली के लिए और रसूलल्लाह ने भी जो दुआ की है वो है नसीर का है, नसीर वज़ीर से बढ़ कर है। ये हम हो सकता है किसी जगह पर यानी अगले प्रोग्राम में बयान करें इसको कि नसीर और वज़ीर में क्या फ़र्क है। ये हुई। अच्छा, उसके बाद जो है जनाब हारून और जनाब मूसा ये बनी इसराइल के दरमियान था, जब कौम जो थी इनकी बनी इसराइल उनका नाम था, तो जनाब हारून जनाब मूसा के बाद बनी इसराइल में दूसरी बड़ी शख्सियत थे, सबसे बड़ी शख्सियत जनाब मूसा और उनके बाद सबसे बड़ी शख्सियत थे जनाब हारून थे। तो ये मंजिलत वाली हदीस फिर यहाँ आएगी, जो शख्सियत और जो रुतबा और जो मनसब जनाब हारून को है वही मनसब जो है हजरत अली को रसूल अल्लाह के बनी नस्बत हासिल है। उसके बाद देखिए हारून मूसा के भाई थे, तो मौलाए कायनात भी रसूल अल्लाह के भाई थे ये। अच्छा, एक बात और कहता चलूँ कि ख़ुद हदीस में इस तरह से आया है कि अमा तरदा, ये इस तरह से है, हारून मिम्मीसा मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिया
ला नबिया बादी। जी, मैं भी इस नुक्ते को पूछना चाहता था आपसे कि अगर मंजिलत वही है जो हज़रत हारून को मूसा की नस्बत है, तो क्या यहाँ पे भी मकाम नबूवत है, या इस बारे में कुछ बताएं।
जी बताएंगे। अच्छा, खुदा और पैगंबर के नज़दीक हारून अपनी कौम में सबसे ज़्यादा अफजल थे, जनाब मूसा तो नबी थे ज़ाहिर सी बात है। खुदा जो कहता है कि जनाब मूसा के बाद एक तो है बनी इसराइल में जनाब हारून सबसे अफजल थे, अब ये कि खुदा के नज़दीक भी अफजल थे, ये दोनों नस्बतें बदली हुई हैं ये इस एतबार से। उसके बाद ये है कि जनाब मूसा जब गायब हुए, यानी उनकी गैबत हुई और उनकी गैरहाजिरी हुई, वो कौम में नहीं थे, तो उस वक्त अलल इतलाक़ यानी हर तरह से, अलल इतलाक़ ये अरबी की इस्तलाह है, यानी हर तरह से, हर गोशे, हर रुख से, हर पहलू से, हर तरह से जनाब हारून जनाब मूसा की जगह पर थे, ये मानना पड़ेगा। तो इसी तरह से आ जाएगा जनाब रसूलल्लाह और मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। और दूसरी बात यह है कि जनाब हारून जनाब मूसा के बाद अपनी कौम में सबसे बड़े आलिम थे, सबसे ज़्यादा आलिम थे और सबसे ज़्यादा जानने वाले थे, इसी तरह से रसूलल्लाह के बारे में आ जाएगा मौला अली के सिलसिले में। और ये कि अल्लाह ने जनाब मूसा की पुष्ट पनाही जो की, पुष्ट मजबूत जो की, वो जनाब हारून के ज़रिए से की। अब ये मैंने 6-7 चीज़ें जिक्र की हैं और मैंने वो की है, इसके अलावा भी और दूसरी हो सकती हैं, क्योंकि देखिए जब भी कोई बात हम कहना चाहते हैं किसी चीज़ के सिलसिले में कि भाई हर तरह से ये कह किसी को कहते हैं कि भाई मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, ये हमारा भाई है या ये मेरा दोस्त है, ये तुम्हारे दरमियान है, ये सारी बातें जो है जो मेरे बारे में है वो इसके बारे में है। अब मैं जा रहा हूँ, अला एक साल में आऊँगा, एक महीने में
बिल्कुल
आऊँगा, एक हफ्ते में आऊँगा, ये अपने किसी से कहते हैं कि जो मेरा है। मगर ये जाहिर सी बात है, ये मसलन घर के कामों में नहीं है, मसलन ये इस करें कि हम घर के कामों में ये नहीं, बकिया सारे मामलात में मेरे जितने भी
सही
दफ्तरी हैं
सही,
सब ये इस
जितने
तरह से
इख्तियारत
हैं,
मुझे हैं सारे इख्तियार
उतने
मैं मुझे
अख्तियार। इस तरह की ताबीर रसूलुल्लाह की, अब ये
सही
ताबीर भी रसूलुल्लाह की ताबीर है, मैंने तो बच्चों को समझाने के लिए घर की और इस तरह की ताबीर
सही
पेश कर दी है। तो इस तरह से रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि हर चीज़ में मौलाए कायनात हारून की तरह है, मगर एक चीज़ में नहीं है सिर्फ, वो है नबूवत के बारे में।
नबूवत के बारे
इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, नबी नहीं है मौलाए कायनात, बकिया सब कुछ है, ये इस हदीस से साबित हो रहा है।
यानी वही जो नबी अकरम पे नाजिल होती है वो हजरत अली पे नाजिल नहीं हो सकती।
जी, वो
बिल्कुल
नबुवत वाली वही नहीं नाजिल हो सकती और वो नबी नहीं है,
बिल्कुल
लेकिन ये कि उसके अलावा जितनी फजीलतें जनाब हारून की थी,
बिल्कुल
जितने मनसब जनाब हारून के थे और जितनी बातें आ सकती, जनाब हारून जनाब मूसा के बाद हयात नहीं थे, जिंदा
बिल्कुल
नहीं थे वो, उनकी ज़िंदगी ही में इनका इंतकाल हो गया
इंतकाल
था
हो
और
गया
रहलत कर गए थे। लेकिन ये कि अगर जनाब हारून जिंदा होते तो अब जाहिर सी बात है वो जनाब मूसा के बाद भी क्या होते, जानशीन होते। इसी तरह मौलाए कायनात हैं कि हर चीज़ नबुवत के अलावा हर चीज़ मौलाए कायनात में आ जाएगी। वो रसूल के बाद सबसे बड़े आलिम भी हैं, सबसे बड़े मुत्तकी भी हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, इमामुल मुत्तकीन हैं, और रसूल के जानशीन हैं जब रसूल ना हो। चाहे ऐसा है कि मदीने से बाहर निकले, मदीने में नहीं है, चाहे इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से चले गए हैं। ये जो रसूल अल्लाह जगह जगह पर कह रहे हैं, इस हदीस को बयान कर रहे हैं, और मैंने वो किया इसके एतबार से कि रसूल अल्लाह, एक तो दो चीज़ इस्तिसना की है रसूल अल्लाह ने, देख लफ्ज़ी एतबार से, एक अखली एतबार से, एक अखली एतबार से हमको समझ में आता है कि रसूल अल्लाह ने एक तो इस्तिसना किया है कि ये नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, तो ये तो जाहिर सी बात है लफ्ज़ी एतबार से रसूल अल्लाह ने खुद कह दिया। एक रसूल अल्लाह और मौलाए कायनात ये आपस में चचाजात भाई हैं, हकीकी भाई नहीं है, सुलभी भाई नहीं है,
सही
जबकि जनाब मूसा और जनाब हारून के बारे में है कि वो सुलभी भाई थे। ये अखली एतबार से हम समझते हैं कि चूंकि जाहिर बकिया सब चीज़ें जो रसूल अल्लाह में हैं वो मौलाए कायनात में आ जाएंगी, जो जनाब मूसा से मुंतकिल हुई थी जनाब हारून की तरफ,
सही
वो जनाब मौलाए कायनात में आ जाएंगे। तो इस एतबार से अगर इस हदीस को देखा जाए तो ये जाहिर बात है सीधी सीधी दलालत करती है कि रसूल अल्लाह के बाद सबसे अफजल, रसूल अल्लाह के जानशीन, रसूल अल्लाह के खलीफा, जो भी आप इसको ताबीर दे लें, वो
बिल्कुल
मौलाए कायनात हैं। और जगह जगह पर रसूल अल्लाह ने इस बात को यानी बयान किया है और किसी और के लिए बयान नहीं किया, इस तरह की ताबीर बयान नहीं की। ये जंगे तबूक का एक बहुत बड़ा वाकया है और बहुत बड़ी हदीस है कि
सही
जो
सही
जगह जगह पर लोगों ने इसको आजमाया है, इसको बयान किया है, और मैंने कहा कि हाकिम निशापुरी ने कहा है कि सहीहुल असनाद, सहीहुल इसनाद है, इसकी सनद में कोई खराबी नहीं है,
खराबी
कोई कमी
बिल्कुल
नहीं है, कोई इस तरह से नहीं, कोई यानी कि कोई इस तरह से रहा हो कि कमज़ोर आदमी रहा हो, झूठ बोल रहा हो, गढ़ने वाला रहा हो, ऐसा कोई आदमी इसमें नहीं
सनद
है।
में नहीं
जी
है,
जी
बिल्कुल
इस तरह
सही
से
फरमा रहे हैं। और ये जो हदीस में आपने इशारा किया है इसकी तरफ कि जब अली अलैहिस्सलाम नबी अकरम के हुजूर में आते हैं तो नबी अकरम फरमाते हैं कि आप जाइए, वापस जाइए मदीने में,
जी
और मदीने में या तो मदीने को आप चला सकते हैं
जी जी
या मैं चला सकता हूँ, हम दोनों
जी
के
जी
सिवा
जी
कोई
जी
नहीं चला सकता मदीने को, क्योंकि वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। तो ये अहम नुक्ता है, क्योंकि मदीना
जी
कैपिटल है और
जाहिर सी
कैपिटल को
बात है,
संभालना बहुत ज़रूरी होता है, दारुल खिलाफा है, तो दूसरे मोमिनीन के लिए भी ये
मदीना
गुंजाइश
ही
होगी।
रहा है,
बिल्कुल
पहले तो मक्का रहा है, लेकिन
बिल्कुल
मक्के के यानी के पूरे अरब का, लेकिन जब रसूल अल्लाह की हुकूमत आ गई तो
तो
रसूल
सिर्फ
अल्लाह ने
मदीने
कैपिटल बना दिया मदीने को
मदीने को बिल्कुल मजा
और
फरमाया
मक्का।
आपने कबला, चूंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है और हमें आप यहीं पे इजाज़त दीजिए, और शुक्रगुजार हैं आपके। उम्मीद है कि नाज़रीन को भी आपकी गुफ्तगू पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात करते हैं और नाज़रीन तक आपके पैगाम पहुँचाते हैं। नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आपको भी आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।